राम प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/7/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम
आप लोगों मन में कोई खास बात मामूली बात न छेड़ना, बात जरा गहरी बातों का भी समय है, तो ऐसी गहरी बात कोई मन में आई पूछो। नारायण 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 मेरे मन में यह है कि अपने अनुभव का निरादर न करें। अपना अनुभव है उसको ठीक माने तो निहाल हो जाते हैं। अपना अनुभव क्या है कि संसार बदल रहा है, ये हमारे सबके अनुभव की बात है। अब अनुभव नहीं हो तो बोलो, कोई बोलो जिसकी अनुभव नहीं आई हुई है, मानो जानी हुई अनुभव, मानो जानी हुई ठीक तरह से हमारे अनुभव में आई हुई जानी हुई बात है, ठीक तरह से पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, ऐसे जान ली है तो उस बात को मान ले। तो संसार बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। इस बात का अगर आदर करे, विशेष महत्व दे, तो आदमी को बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होगा। तत्व ज्ञान तक पहुंच सकता है, परमात्मत्व का बोध हो जाए वहां तक पहुंच सकता है। इतनी शक्ति जैसे भगवान ने देवता आदि से भी अधिक महत्व दिया है मानव शरीर का, और ये परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, तो परमात्म तत्व को प्राप्त करने की सामग्री भगवान ने दी है आपको। पढ़ने की, सुनने की, सीखने की जरूरत नहीं है, इतनी विलक्षण बात है। तो ये विवेक भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है विशेषता से। शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो विवेक की ही महिमा है। महिमा हम समझ लेते हैं शरीर की, शरीर की महिमा नहीं है, शरीर की तो निंदा आती है। रामायण में बताया है कि क्षितिज पाप गगन शरीरा समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया कि रामायण में। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाता देही, तो सबसे दुर्लभ बताया तो उत्तम शरीर बताया और शरीर को अधम बताया, इन दोनों की संगति कैसे बैठे। मामूली आदमी तो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोल सकता है, पर गोस्वामी जैसे संत नहीं बोलते, उत्तर पुत्र नहीं बोलेंगे, वो तो ठीक बोलेंगे अपनी बात से, अपनी बात करते ऐसा नहीं बोलेंगे, सच्ची बोलेंगे, ठीक मजा से बोलेंगे। तो ये दोनों बात कहते हैं पंच देते या अधम शरीरा, और वहां कहते हैं सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव चलाते जाते दे ही, तो दोनों को मेल नहीं बैठता। तो क्यों नहीं बैठता, अपनी समझ में कमी है। गोस्वामी जी के कहने में कमी नहीं है, हमारे समझ की कमी है। तो कैसे समझें, तो जहां दुर्लभ बताया सबसे दुर्लभ मानव दे जीव चरण से जात दे अगर क्या सही है आगे भी विराग भगति शुभ दे दी जहां मनुष्य को दुर्लभ बताया वहां अगर ये बात बताई कि नरक स्वर्ग अपवर्ग जैसे भी स्वर्ग मिल सकता है इसे नरक मिल सकता है मुक्ति मिल सकती है ज्ञान मिल सकता है वैराग्य मिल सकता है और भगवान की भक्ति मिल सकती है और एक बात और है सोलह से लाल दूरी मिल सकती है पर वो नरक के अंतर्गत आ गई नरक दो भेद एक स्थान विशेष नरक है एक योनि विशेष नरक है तो सांप विश्व आदि की योनि विशेष नरक है और कुंड है वे स्थान विशेष नरक है नरकों के दो भेद है तो नरक शब्द के अंतर्गत छह बातें बताई छह बातों में शब्द नरक भी आया है नरक स्वर्ग भगवान के दिए इसमें तो सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य किसी स्वरूप से जिस शरीर से नरक मिल सकते हैं ये महिमा हुई किसे निंदा हुई तो निंदा में महिमा में तात्पर्य नहीं है आप ध्यान देंगे सुने बात मर्म की बात बताता हूं मनुष्य के उपयोग की जरूरत है चीज वस्तु कोई बढ़िया नहीं है परिस्थिति कोई बढ़िया और घटिया नहीं है धनवत्ता निर्धनता कोई घटिया बढ़िया नहीं है विद्वत्ता और मूर्खता घटिया बढ़िया नहीं है हम लोगों को जो चीज मिली है जो अवस्था मिली है वो घटिया नहीं है क्योंकि धन मिलना न मिलना ये कोई खास बात नहीं है निरोगी रहना रोगी होना कोई खास बात नहीं है विद्या पढ़ने का विद्या न पढ़ने का कोरा मूर रह जाना ये खास बात नहीं है आपको खास बात नहीं तो कोई क्या खास बात है खास बात है अपने को मिली हुई परिस्थिति का सदुपयोग करने की महिमा सदुपयोग की है निंदा दुरुपयोग की है ये बात याद रखे जैसी है बढ़िया बात है मैं विशेष जोर उस बात पर देता हूँ जो मेरे को अच्छी लगी है अच्छी लगती है और ये मिलने पर मेरे बड़ी प्रसन्नता हुई है जब मेरे को ये बात मिली है तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितना ज्ञान हो गया हमारे को ऐसा कोई परिस्थिति खराब नहीं कोई परिस्थिति बढ़िया नहीं तो उपयोग बढ़िया और घटिया है उसका उपयोग अच्छा किया जाए तो कल्याण करने वाली है और उपयोग खराब किया जाए तो पतन करने वाली है इस वास्ते जो परिस्थिति जिसको मिली है उसी परिस्थिति में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है ये बात आपको तो किसी को नहीं मालूम देती होगा हमारे जो कई बार सत्संग करते हैं उनको तो नई नहीं मालूम रहेगी ये पुरानी बात है परंतु नया ही आदमी सुने तो उसको नई मालूम रहेगी सब परिस्थितियां परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाली है हर एक आदमी नहीं समझेगा मानेगा ही नहीं परंतु मेरे को मिली ऐसी बात है मैंने कही है तो परिस्थिति कोई खराब नहीं है उसका सदुपयोग करना है दुरुपयोग नहीं करना है मनुष्य शरीर बढ़िया है परंतु इसका दुरुपयोग किया जाए तो नरक मिलेगा तो मनुष्य शरीर नरक की प्राप्ति कराने वाला नहीं है ना स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है ना मुक्ति कराने वाला है ना कोई ज्ञान दिलाने वाला ना भक्ति दिलाने वाला ना भक्ति देने वाला है ना मुक्ति देने वाला है इसका उपयोग वो सब देने वाला है जो परिस्थिति मिली है जो आपको वस्तु मिली है जो विद्या मिली है जो योग्यता मिली है जो अधिकार मिला है जो संपत्ति मिली है जो कुछ मिला है परिवार मिला है वो सब का सब ही आपका साक्षात कल्याण कराने वाला है। ये बात मेरे को बहुत कम जगह मिली है, ज्यादा जगह नहीं मिली है, पर मिली है मेरे को, संतों से मिली है, पर बहुत कम जगह। तो ये बड़ी सावधानी की बात है, उसका सदुपयोग कैसे करें, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करो, ये सदुपयोग हो जाएगा। ये हिसाब होता है ना, हिसाब की ऊपरवाड़ी होती है, ऊपरवाड़ी से हिसाब जल्दी हो जाए, ऐसे करो देरी लगे निचट हो जाए। जैसे ब्याज है तो 100 रुपये एक मित्र ब्याज लेना है और 10 महीना होया तो 10 महीने का ब्याज कितना हुआ है, 10 रुपया हुआ, तो 10 रुपया हुआ तो कैसे देखे इसको, तो 10 रुपया का ब्याज अब कैसे जोड़े, 10% जुड़ जाएगा, 15 रुपया हो या 15.5 रुपया हो, 15.5 रुपया का 15.5 रुपया हो मानो 1.5 रुपया ब्याज हो जाए, 1.5 रुपया ब्याज होगा तो 10 महीना कितना होगा, 15, तो 10 डेढ़ा करना पड़ेगा, 10 को 1.5 कर दो। अच्छा दूसरी भी आपका क्या है, इसको 1.5 रुपया है तो 150 गुना करो, 150 गुना का 10 महीना का 150 गुना करो, कितना होगा भाई, 150 गुना किया जाए तो कितना होगा, सवा 200 हो गया, 150 का
150 को 100 से गुणा करना है,
हाँ
150 को,
हाँ
150 गुणा
करना,
2250 हो
जाए। यू क्या कर रहे हो इसी बात, मैं तो अब अटकू तो बात ठीक है, बढ़िया क्या अटको इसमें, वहां तो कहते बाबा जी को बैठे यहाँ से व्यापारी आदमी अटको,
150 हुआ, 100 को 150 से गुणा करने पर 150 बना,
150 हुआ, अच्छा 150 हुआ तो 12 महीना का, अगर 12 1 महीने का 1.5 रुपया हुआ तो 150 हुआ, तो 150 का तो 1.5 रुपया हुआ, है जी।
आपने तो 100 को 150 से गुणा करने के लिए कहा, वो तो 150 ही बनेगा, 100 को 150 से गुणा करेंगे 150 बनेगा,
150 बनेगा ना, अब 150 गुणा बनेगा तो 150 में क्या अंक होंगे,
1, 5 और 0,
1 और 5 0 होगा, तो 101, 5, 0 होगा, तो 1, 5 0 होगा ना, 5, तो 5 का 50 रुपये हुआ, 50 हुआ ना, तो 1 50 में तो 50 का कितना है ब्याज,
वो 1.5 के हिसाब से,
नहीं नहीं 1.5
के हिसाब से, 1.5 के हिसाब से, हाँ
हाँ,
तो 2 25
अच्छा ये 1.5 कर दो तो ठीक हो जाएगा, 1.5 कर दो, नहीं तो 50 कर दो, फिर 1 कर दो, एकदम मिला कर देखो जितना अंक आवे 2 अंक छोड़ दो, ब्याज हो गया ठीक, जितना अंक आवे उतना अंक लिख लो और 2 अंक उसे छोड़ दो, उतना ही क्या, अब बोलो मैं गलती में तो बोला भी बढ़िया हो जाएगी, है जी ठीक है। तो ये सिद्ध ये उपराड़ी है, पर जितना गुणा हो जितना पूरा कर और 2 अंक छोड़ दो, 1000 अंक में जितने रुपये हो गया, सीधी बात। तो ऐसे उपराड़ी है, उपराड़ी से ज्ञान ठीक हुए, अपने उपराड़ी कह रहे हैं, और अपने महाजन लोग अग्रवाल उसको कहते हैं गुरु, इसको गुर बताओ, तो वो गुर है, इसको गुर कहते हैं, उपराड़ी कहते हैं, और बंगाल में शुभंकरी कहते हैं, शुभंकरी, तो भाषा के बारे में बात वही उपराड़ी, अपने उपराड़ी मारवाड़ी की, ऐसे ये उपराड़ी है, हरेक परिस्थिति उस परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते कल्याण के लिए नई परिस्थिति की जरूरत नहीं है, इतनी विलक्षण बात है। अब वो कहने मेरे को जब मिली ये बात तो बहुत ही प्रकाश हो गो, ये तो बात बहुत विचित्र है। हरेक परिस्थिति का सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। नई बात है, नहीं तो भाई हमारे पास विद्या नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हमारे रोग है, हम ऐसे हैं। अरे भाई तुम्हारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात, एकदम ऐसी बात, सच्ची बात। ठीक बात ये, केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने में बात भी हम जानते नहीं तो अपने स्वार्थ का त्याग कर और दूसरा का हित सोचो, ये सदुपयोग हो जाएगा। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरा का हित सोचो, सदुपयोग हो जाएगा। अब करोगे तो कई तरह बाधा आएगी, इसमें बाधा आएगी कि स्वार्थ है इसका, अपना स्वार्थ छोड़ने के काम क्यों करें हम, कृष्ण का पालन कैसे होगा। इनमें कई प्रश्नोत्तर कई होंगे, मामूली नहीं, बहुत प्रश्नोत्तर, परंतु बात ठीक होंगे, उपरण सही है, एकदम एकदम सही। तो स्वार्थ बुद्धि है ना, वो आदमी को, स्वार्थ बुद्धि आदमी को भ्रमित कर देती है, अपने न्याय पर अपनी मर्यादा पर रहने नहीं देती। जहां लोभ आ जाता है ना, स्वार्थ बुद्धि आ जाती है तो मर्यादा पर नहीं देना, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। कम से कम दूसरे का नुकसान न हो, ये बात रखो। अब कम से कम बताइए, इसे शुरू करो। तुम्हारे स्वार्थ भी आ जाए, अभिमान भी आ जाए तो बात रख देंगे, परंतु कम से कम ये बात करो कि ऐसा काम कर दो किसी का नुकसान तो नहीं है, बस केवल ख्याल रखो। हित करो, और हित न कर सको तो कम से कम नुकसान मत करो। केवल ये बात, इतनी एक ही कि इतना मैं करता हूँ किसी का नुकसान तो नहीं है, किसी की हानि तो नहीं है, किसी का अपमान तो नहीं है, किसी की निंदा तो नहीं है, किसी का हर्ष तो नहीं है, कितना ख्याल करो। आपको दिखे देता मैं दिख सके तो आपको माफी, सब हमारे दिखते ही नहीं, हम क्या करें, दूसरी हानि होती हमें पता ही नहीं इस बात का, तो उसे दोष नहीं। आपका पता हो तब तक आप उसका सावधान रखो, ठीक बात हो जाएगी, एकदम ठीक बात जाएगी बात। तो परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए, मानो आप आचरण करने के लिए कैसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है, अपने जहां है वहीं चलो, किसी का अहित नहीं करना। गीता में साफ लिखा है, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, हित करो, मन पहले अहित कर त्याग कर दो, दूसरे किसी का अहित न हो, ये रखो, फिर सबका हित रखो। बस सर्वभूत हिते रता है, हित में आपकी जैसे ही प्रीति होनी चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, सावधान रखो। नारायण 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 नारायण, ये बात है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, करके देखो, फिर शंका हो फिर बोलो, कल फिर पूछो। नारायण नारायण नारायण।